हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम के सार को प्रस्तुत करने की श्रृंखला में आज प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय पर चर्चा करेंगे। कल चर्चा हुई थी श्रीमद् भागवत के महात्म्य पर, भागवत क्यों पढ़ना चाहिए, क्या महत्व है, शास्त्रों में पद्म पुराण स्कंद पुराण इत्यादि में क्या कहा गया है, भागवत में क्या कहा गया है, आचार्यों ने क्या कहा है, इसकी चर्चा कल हम कर चुके हैं। और आज से पहला अध्याय पर चर्चा, हर रोज़ एक अध्याय पर चर्चा करेंगे ताकि पूरे भागवत को जान सकें कि क्या विषय हैं भागवत में। तो पहला अध्याय आज इसके पहले श्लोक को पढ़ेंगे। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माद्यस्य यतो अन्वयादतिरतश्चार्ष्वे भक्भिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवय मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो सृपा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। जन्माद्यस्य यतो अन्वयादितरतश्चार्थेश भिज्ञः स्वरा तेने ब्रह्महृदयादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। पहला श्लोक श्रीमद् भागवतम का है जो भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करके प्रारंभ होता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अर्थात पहले ही श्लोक में शुरुआत में ही व्यासदेव इस ग्रंथ के विषय को कह रहे हैं। वैसे ये जो पहले तीन श्लोक हैं ये मंगलाचरण हैं। मंगलाचरण अर्थात जहाँ भगवान को प्रणाम किया जाता है, जिस ग्रंथ को लिख रहे हैं उसके विषय को बताया जाता है और फिर उसको पढ़ने का आशीर्वाद दिया जाता है। क्या आशीर्वाद होगा, क्या लाभ होगा इसको पढ़ने से, तो मंगलाचरण ये पहले तीन श्लोक हैं। तो ये जो पूरा एक स्कंद है, पहला स्कंद, इसमें 19 अध्याय हैं पहले स्कंद में। और इन उस 19 अध्यायों को प्रमुखतः दो भागों में बांटा जा सकता है। दोनों में प्रश्नोत्तर हैं। वैसे तो पूरा भागवतम ही प्रश्नोत्तर है। शौनक आदि ऋषि प्रश्न करते हैं, सुत गोस्वामी उत्तर देते हैं। परीक्षित महाराज प्रश्न करते हैं, सुखदेव गोस्वामी उत्तर देते हैं। विदुर प्रश्न करते हैं, मैत्री मुनि उत्तर देते हैं। युधिष्ठिर प्रश्न करते हैं, नारद मुनि उत्तर देते हैं। व्यासदेव प्रश्न करते हैं, नारद मुनि उत्तर देते हैं। सारी भागवतम का ये मूल है कि प्रश्नोत्तर हैं ही उसमें। जिज्ञासा है अर्थात भागवत ये समझाती है कि जब तक हृदय में जिज्ञासा नहीं है कृष्ण की प्राप्ति के लिए, कृष्ण को जानने के लिए, तब तक हम कृष्ण की ओर जा नहीं सकते, ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। तो जिज्ञासा बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे भगवद गीता समझने का, शास्त्र समझने का एक लक्षण उस व्यक्ति का जो शास्त्र समझना चाहता है वो ये है कि उसे जिज्ञासु होना चाहिए। वो एक शिष्य के लक्षण हैं। तो यहाँ पर जिज्ञासा है। तो पहला स्कंद ये प्रमुखतः दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला भाग प्रथम अध्याय से लेकर तीसरे अध्याय तक, ये प्रथम भाग हो सकता है जिसमें पहले अध्याय में 6 प्रश्न पूछे जाते हैं। शौनक आदि ऋषि पहले अध्याय में 6 प्रश्न पूछेंगे, दूसरे और तीसरे अध्याय में सुत गोस्वामी उसका उत्तर देंगे, वो जो प्रश्न उन्होंने पूछे। फिर चौथे अध्याय में फिर से 4 प्रश्न पूछेंगे शौनक आदि ऋषि, और 4 प्रश्नों को पूछते हैं। और फिर 5वें अध्याय से लेकर 19वें अध्याय तक उनका उत्तर सुत गोस्वामी देते हैं। तो इसलिए 2 भाग है, पहला पहले अध्याय से 3रे अध्याय तक, दूसरा 4थे अध्याय से 19वें अध्याय तक। ये प्रथम स्कंद के 2 भाग हैं। तो आज प्रारंभ करेंगे पहला अध्याय, पहले स्कंद का पहला अध्याय। पहला श्लोक जो हमने पढ़ा बड़ा महत्वपूर्ण है। दरअसल भागवत के पहले 3 श्लोक, जैसे हमने बताया कि ये मंगलाचरण हैं, पहले बताते हैं कि किसका वर्णन होने वाला है, फिर बताते हैं कैसे उसको समझना चाहिए, फिर बताते हैं कि क्या उसका लाभ होगा। तो पहला श्लोक संबंध को स्थापित करता है। वेदों में 3 बातें प्रमुखता कही गई हैं, कृष्ण संबंध भक्ति अभिधेय है, प्रेम प्रयोजन वेदे 3 वाक्य कहे। वेदों में 3 ही चीज़ें हैं, संबंध अभिधेय और प्रयोजन। संबंध अर्थात जीव का कृष्ण से क्या संबंध है, अभिधेय अर्थात उस संबंध को हम कैसे स्थापित कर सकते हैं, और प्रयोजन अर्थात जब हम वो संबंध स्थापित कर लेते हैं तो उसका क्या लाभ है। तो यही 3 चीज़ें सारे वेदों का मूल विषय हैं, और भागवत भी प्रारंभ में इन्हीं 3 विषयों को प्रकट करता है। पहले श्लोक में संबंध को दिया गया है, दूसरे श्लोक में अभिधेय दिया गया है, और 3रे श्लोक में प्रयोजन दिया गया है। क्या प्रयोजन है? तो पहला जो श्लोक है जिसको हमने अभी पढ़ा, जन्माद्यस्य त्वं वयादि तरश्चार्थेष्व विज्ञः स्वराट, तो इसमें व्यासदेव समझा रहे हैं कृष्ण का वर्णन, परम सत्य कौन है, सत्यम परम धीमहि। इसकी बहुत सी व्याख्याएं हुई हैं इस श्लोक की। ये इतना महत्वपूर्ण श्लोक है कि आचार्यों ने एक एक महीने तक रोज कई कई घंटे केवल 1 श्लोक पर चर्चा की है। हम लोग के पास तो इतना समय नहीं है कि इसके एक एक शब्द को जानने का प्रयास करें, लेकिन मूलतः ये शब्द कहता है कि श्री कृष्ण सभी चीज़ों के स्रोत हैं। जन्माद्यस्य यतः, जो कुछ भी है कृष्ण से आता है, और वो स्वराट हैं, स्वतंत्र हैं, पूर्ण स्वतंत्र। कोई भी जीव ब्रह्मा आदि भी इस जगत में स्वतंत्र नहीं है, स्वराट नहीं है, लेकिन श्री कृष्ण स्वराट हैं। स्वराट अर्थात पूर्ण स्वतंत्र, कोई बंधन नहीं है उनका। वो जब इस जगत में आते हैं, इस जगत को चलाते हैं, इसका नाश करते हैं, पालन करते हैं, ये सब किसी बंधन से नहीं है, ये तो इच्छा मात्र से भगवान करते हैं, इसीलिए उन्हें स्वराट कहा जाता। उनको कोई बाध्य नहीं कर सकता कि आपको इस जगत में आना है, आपको जन्म लेना है, आपको लीला करनी है। स्वराट अपनी इच्छा से आते हैं, अपनी इच्छा से प्रकट होते हैं, स्वेच्छा से इस धाम को छोड़कर चले जाते हैं, फिर कहीं और लीला करते हैं। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः, भगवान का जो ज्ञान है हालांकि वे ब्रह्मा जी को देते हैं। तेने ब्रह्म हृदय, ब्रह्मा जी के हृदय में प्रकट होकर उन्होंने ज्ञान दिया, लेकिन फिर भी मुह्यन्ति यत् सूरयः, ये ऐसा ज्ञान है, भगवान ऐसे हैं, ये जगत ऐसा है। मुह्यन्ति यत् सूरयः, बड़े बड़े देवता भी मोहित हो जाते हैं, मोह में पड़ जाते हैं। वही ब्रह्मा जी जिनको भगवान ने ज्ञान दिया, वो जब कृष्ण को देखते हैं लीला करते हुए, मुह्यन्ति, मोह में पड़ जाते हैं। भगवान ने ज्ञान दिया है, लेकिन भूल जाते हैं भगवान को, ये मोह है। तेजो वारी मृदान यथा विनिमयो यत्र तिसर्गो मृषा धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। लेकिन लोग मोह में पड़ते हैं, जीव मोह में पड़ते हैं, देवता मुह्यन्ति यत् सूरया, लेकिन भगवान निरस्त कुहकम, कुहकम अर्थात माया, भगवान उससे परे हैं। धामना, सदा अपने धाम में रहते हैं, अपने इस मोह माया जगत के परे रहते हैं सदा। जब इस जगत में आते हैं तब भी इस जगत में स्पर्श नहीं करते, इसीलिए निरस्त कुहकम, माया से सदा परे हैं भगवान। तो ऐसे भगवान का वर्णन पहले श्लोक में हुआ, सत्यम परम धीमहि। उसके बाद व्यास देव, ये संबंध है अर्थात जीव और भगवान का क्या संबंध है उसमें बताया। और दूसरे श्लोक में धर्म प्रोजितः कैतवत्र निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तमत्र वस्तु शिवदम तापोत्रयनुमूलनम, दूसरे में बताया गया धर्म क्या है अर्थात सही मार्ग क्या है भगवान को प्राप्त करने का। कैतव धर्म को त्याग दिया है, धर्म अर्थ काम मोक्ष इसको त्याग दिया गया है, मोक्ष को भी निकाल दिया है, क्योंकि जो व्यक्ति मोक्ष की कामना करता है उसके हृदय में दुखों से दूर जाने की कामना होती है। और क्योंकि ये भी एक कामना है कि मुझे मेरे जीवन में कष्ट ना हो, दुख ना हो, ये भी शुद्ध भक्ति नहीं है, भागवत में इसको भी निकाल कर बाहर कर दिया। धर्म प्रोजित कैतवत्र, ये सब कैतव धर्म, झूठे धर्म, छल वाले धर्म दिखाए गए। कैतव यानि धोखा देना, झूठा छल करना, तो इसीलिए कैतव धर्म, ऐसे धर्मों को बाहर निकाल दिया गया, फेंक दिया गया उठा के भागवत से। तो फिर क्या किया गया है, वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम, जो सही में शुभ है लोगों के लिए उसको बताया गया है, और वो है भक्ति का मार्ग, और वो इस श्रीमद् भागवत में बताया। और फिर तीसरे श्लोक में वर्णन करते हैं कि इसका लाभ अर्थात प्रयोजन क्या होता है। निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुक मुखाद अमृत संयतम, शुक देव गोस्वामी के मुख से निकला हुआ ये अमृत है, और इसको पीने से इसमें आपको आमंत्रण दिया जा रहा है, पिबत भागवतम आलय, आइए आइए भागवत को पीछे। तो ये प्रयोजन है कि व्यक्ति जब भागवत का श्रवण कर लेता है तो फिर उसको और कोई रस आनंद नहीं देता। तो ऐसे ये पहले तीन श्लोक हैं, तो पहले तीन श्लोक ये भागवत की भूमिका हैं। तो ये जो पहला अध्याय है इसको भी विभाजित किया गया है, तो पहले अध्याय में पहले तीन श्लोक ये भूमिका है, भूमिका मतलब भागवत का बताया जा रहा है, विषय बताया जा रहा है इत्यादि। और फिर चार से लेकर 19 तक, चार से जब श्लोक शुरू होते हैं चौथा श्लोक से लेकर आठवां श्लोक तक, ये शुकदेव गोस्वामी का गुणगान है। शुकदेव गोस्वामी आए, वहाँ पर उनको बिठाया, उनका गुणगान किया, ये चौथे से आठवें श्लोक तक। फिर नवे श्लोक से लेकर कलयुग का वर्णन किया गया है कि इस कलयुग में क्या स्थिति है, कैसे लोग रह रहे हैं, और पीछे प्रश्न पूछे गए हैं सुत गोस्वामी से। तो ये 9 से लेकर 23 श्लोक तक का विषय है। तो कुल 23 श्लोक हैं पहले अध्याय में, और पहले तीन श्लोक भूमिका बताते हैं, चौथे से आठवें तक सुत गोस्वामी का गुणगान, फिर 9 से लेकर 23 तक कलयुग का वर्णन, और 6 प्रश्नों को पूछा गया। तो ऐसा ये पहला अध्याय है। तो चौथे श्लोक में वर्णन किया जाता है आगे भागवत में कि किस प्रकार एकदा एक समय सभी ऋषि मुनि नैमिषारण्य में यज्ञ करने के लिए इकट्ठा हुए, एकत्रित हुए। नैमिषारण्य का गुणगान कई पुराणों में किया गया है। श्रील प्रभुपाद समझाते हैं कि नैमिषारण्य को बहुत शुभ, बहुत शुद्ध स्थान माना गया है यज्ञ करने के लिए। वराह पुराण इत्यादि का वर्णन, वायव्य तंत्र का वर्णन करते हुए प्रभुपाद समझाते हैं कि जो नैमिषारण्य है ये सारे ब्रह्मांड का केंद्र है, ऐसा वायव्य तंत्र में लिखा गया है। जब ब्रह्मा जी ने इस ब्रह्मांड की रचना की तो उन्होंने इसको एक पहिए की तरह बनाया, और जो पहिए का केंद्र होता है जिसमें सब कुछ जुड़ा होता है वो नैमिषारण्य किया, अर्थात नैमिषारण्य इस ब्रह्मांड का केंद्र माना जाता है। और साथ साथ नैमिषारण्य में अन्य स्थानों में वर्णन है कि करने से अगर कोई यज्ञ इत्यादि करते हैं तो फिर जितने भी आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं उनका नाश होता है, आसुरी प्रवृत्तियों का नाश होता। तो इसीलिए नैमिषारण्य को चुना गया, 88,000 ऋषि मुनि वहाँ पर उपस्थित हुए, एकत्रित हुए यज्ञ करने के लिए, और उन्होंने 1,000 वर्ष तक यज्ञ करने का प्रण लिया, 1,000 वर्ष तक यज्ञ करेंगे। तो यज्ञ कर रहे थे, यज्ञ प्रारंभ किया, और अभी यज्ञ शुरू ही था सुत गोस्वामी आ गए, और उन्होंने सुत गोस्वामी से कहा कि आप सब कुछ जानते हैं, इतिहास जानते हैं, वेदों को जानते हैं, आपके ऊपर कृपा है, आप बड़े सौम्य हैं, आप नम्र हैं, आप व्यास देव के प्रतिनिधि हैं, इसीलिए आप हमें श्रीमद् भागवतम या हमें ऐसी चीज बताइए जो हमारे लिए लाभदायक हो। तो सुत गोस्वामी कौन हैं? सुत गोस्वामी भागवत में अगर देखा जाए तो बड़े महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। सुत गोस्वामी को 3 महान लोगों की कृपा प्राप्त हुई है, व्यासदेव की, बलराम जी की और सुखदेव गोस्वामी की। तो सुत गोस्वामी को तीनों की कृपा प्राप्त हुई है। कैसे? सुत गोस्वामी व्यासदेव की सेवा किया करते थे, सुत वंश में जन्म हुआ था, शास्त्र पढ़ने का अधिकार नहीं था, व्यासदेव की सेवा किया करते थे, और उनकी सेवा से व्यासदेव बहुत प्रसन्न हुए, और व्यासदेव ने उनको कहा कि ठीक है तुमको मैं ये सारा ज्ञान देता हूँ। तो शास्त्रों का ज्ञान उन्होंने सुत गोस्वामी को दिया। बलराम जी की कृपा हुई, हम लोग देखते हैं 10वें स्कंद में जब इनके पिता रोमहर्षण सुत वो प्रवचन कर रहे थे, व्यासासन पर बैठे थे, बलराम जी आए, सभी लोग उठकर खड़े हो गए। स्वाभाविक है, बलराम जी आ रहे हैं, कौन व्यक्ति होगा जो, हमें तो कोई वैष्णव आए तब भी उठकर खड़ा होना चाहिए, ये एक नियम है। ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई वैष्णव को देखकर उठकर खड़ा नहीं होता तो ये वैष्णव अपराध है, प्रसन्न नहीं होता तो वैष्णव अपराध है, उठकर उसको स्थान नहीं देता तो ये अपराध है। और यहाँ तो कोई वैष्णव नहीं, स्वयं बलराम जी आए, भगवान आए हैं। तो उस समय सारे ऋषि मुनि उठकर खड़े हो गए, लेकिन सुत गोस्वामी रोमहर्षण सुत जो उस समय व्यासासन पर बैठे थे, प्रवचन कर रहे थे, उन्होंने सोचा कि जो व्यक्ति व्यासासन पर बैठा है उसको उठकर खड़े होने की आवश्यकता नहीं है। वैसे साधारण अवस्था में ये ठीक है, ये एक शास्त्र का नियम है, साधारण अवस्था में जो व्यक्ति व्यासासन पर बैठा हो उसको उठकर खड़े होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यहाँ कोई साधारण स्थिति नहीं थी, स्वयं भगवान आए थे, बलराम जी आए थे, तो इसीलिए उसको उठकर खड़ा होना चाहिए था, वो उठकर खड़े नहीं हुए, बलराम जी ने मार दिया। किस लिए मारा? के अहंकार में, अरे मैं आया और उठकर नहीं खड़ा हुआ, नहीं, एक नियम स्थापित करने के लिए, क्योंकि भगवान जब आते हैं तो धर्म की स्थापना करते हैं, तो ये धर्म सिखलाने के लिए और ये बतलाने के लिए कि इसके हृदय में अहंकार हो गया है, क्योंकि ये पुराणों पर वर्णन कर रहा है, पुराणों को जानता है, तो इसीलिए अहंकार हो गया, तो उसको मार दिया। तो सारे ऋषि मुनियों में हाहाकार, सब कहने लगे कि अरे आपने अब इसको मार दिया, अब हमें सुनाएगा कौन? तो बलराम जी ने कहा ठीक है, अगर तुम चाहते हो तो इसको पुनर्जीवित कर देता हूँ मैं। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं हम वो भी नहीं चाहते, आपने जो निर्णय लिया वो सही है, आप गलत काम नहीं कर सकते हैं, तो आपने जो किया वो सही है, तो उसको पुनर्जीवित मत कीजिए। पुनर्जीवित करने का अर्थ होगा कि हम लोग ये आपसे कह रहे हैं कि आपने जो किया गलत है उसको दोबारा ठीक कीजिए, नहीं, आपने जो किया एकदम ठीक है, लेकिन हमें उसका उपाय बताइए कि अब हम सुने कैसे। तो उस समय बलराम जी ने अपनी कृपा इनके पुत्र रोमहर्षिणी सूत को दी कि ठीक है, पिता के रूप को पुत्र जीता है, अर्थात पुत्र अपने पिता का जीवन जीता है, अर्थात आगे बढ़ाता है या उसका ही रूप है, तो इसीलिए मैं पुत्र को आशीर्वाद देता हूँ, अब ये आपको सुनाएगा। तो बलराम जी की कृपा मिली सुत गोस्वामी को। सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवत के अंत में अगर आप देखें 12वें स्कंद में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, दरअसल जब सुखदेव गोस्वामी ने भागवत कहनी शुरू की, बहुत सारे ऋषि मुनि थे, सुत गोस्वामी भी थे, वो कहीं दूर बैठे हुए थे, सुखदेव गोस्वामी ने पास में बुला, इधर आओ, इधर बैठ के सुनो। और जब भागवत समाप्त तो हो गई 12वें स्कंद के अंत में, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि भविष्य में ये सुत गोस्वामी इसी भागवत को कहेंगे, ये भागवत में ही लिखा है 12वें स्कंद में, तो वहीं उन्होंने आशीर्वाद दिया कि ये कहेंगे, उनको शक्ति प्रदान की। तो देखिए ये सुत गोस्वामी हैं जिनको इतने महान लोगों की कृपा प्राप्त हुई और इसीलिए वो शास्त्रों को बोल पाए। तो ऐसे सुत गोस्वामी को सारे जो ऋषि मुनि हैं उन्होंने बिठाया, उनका गुणगान किया कि आप सब कुछ जानते हैं, इतिहास जानते हैं, आप शास्त्रों को जानते हैं, आप नम्र हैं इत्यादि। और श्रील प्रभुपाद उन श्लोकों के तात्पर्य में उस व्यक्ति के लक्षण या गुणों को कहते हैं जो भागवत कथा कर सकता है, जो व्यास आसन पर बैठकर श्री कृष्ण की कथा कर सकता है। और कौन है, श्रील प्रभुपाद कुछ लक्षणों को देते हैं। पहला, उसे सारे दोषों से मुक्त होना चाहिए। कलयुग के चार प्रमुख दोष प्रभुपाद कहते हैं, मांसाहार, मदिरापान, अवैध संग और द्युत क्रीड़ा। तो प्रभुपाद कहते हैं कि जो भी व्यक्ति व्यास का प्रतिनिधि है, व्यास आसन मतलब ये आसन व्यास देव का है, हम उनके प्रतिनिधि के रूप में इस पर बैठते हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं जो भी व्यास का प्रतिनिधि है, सबसे पहले उसको इन दोषों से मुक्त होना चाहिए। अगर उसके अंदर ये दोष है तो व्यास आसन पर नहीं बैठ सकता। दूसरा, उसका चरित्र बेदाग होना चाहिए, अन्यथा व्यास आसन पर नहीं बैठ सकता। तीसरा, जो व्यासदेव कहते हैं, जैसा व्यासदेव ने ज्ञान दिया है वैसा ही ज्ञान उसे देना चाहिए, अपने मन की बात नहीं, तब वो व्यासासन पर बैठ सकता है। चौथा, उसे शास्त्रों के सार को समझना चाहिए, शास्त्रों का सार समझा सके, अलग अलग दर्शनों को जानना चाहिए। प्रभुपाद लिखते हैं बहुत से दर्शन हैं, विशेषतः षट दर्शन, तो उनको जानना चाहिए। तो ये प्रमुख योग्यताएं श्रील प्रभुपाद उस व्यक्ति की देते हैं जो व्यासासन पर बैठ सकता, और ये योग्यताएं सुत गोस्वामी में उन ऋषि मुनियों ने देखी। और उसे बड़ा नम्र होना चाहिए, अपने गुरु का नम्र सेवक, और उसे नम्रता से समर्पित भाव से अपने गुरु से श्रवण किया होना चाहिए। जिसने समर्पित भाव से श्रवण नहीं किया वो कभी गुरु नहीं बन सकता। श्रील प्रभुपाद का उदाहरण देखते हैं, जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रवचन किया करते थे, उनके कई अन्य शिष्य घूमने चले जाया करते थे, राधा कुंड में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रवचन कर रहे हैं, उनके शिष्य इधर उधर मंदिर दर्शन के लिए चले गए, लेकिन प्रभुपाद वहीं बैठे रहते थे, श्रवण करते थे। प्रभुपाद एक स्थान पर कहते हैं कि कभी कभी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की अंग्रेजी इतनी ऊंची थी कि हमें शब्द समझ नहीं आते थे, लेकिन फिर भी हम सुना करते थे, तो प्रभुपाद सुनते थे। और जब श्रील प्रभुपाद जी को भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के पास लाए कि ये अभय बाबू हैं, इनको आपको दीक्षा देनी है, तो वो लोग कह रहे थे बहुत मदद करते हैं, हमें थोड़ा धन भी देते हैं, बहुत अच्छा कीर्तन करते हैं इत्यादि। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने ये सब नहीं देखा, उन्होंने कहा हाँ मैं इसे दीक्षा दूंगा क्योंकि ये बहुत अच्छा सुनता है, श्रवण अच्छा करता है, ये लक्षण। तो जिस व्यक्ति ने समर्पित भाव में श्रवण किया है, गुरु से सुना है, वो एक गुरु बन सकता है, वो दूसरों को समझा सकता है। तो ये कुछ गुण सूत गोस्वामी के दिए गए कि उन्होंने व्यासदेव के प्रतिनिधि हैं, और जैसा कहें वैसा ही। ये बहुत महत्वपूर्ण है। प्रभुपाद कहा करते थे, हमें मानसिक कल्पना से कुछ नहीं कहना है, जो आचार्यों ने कहा उसको केवल दोहराना है, बस यही हमारी योग्यता। आचार्यों ने जो कहा उसको दोहरा देना, कृष्ण ने जो कहा उसको दोहरा देना, बस। तो ऐसे उन्होंने इनके गुणों को कहा। और फिर आगे उन्होंने प्रश्न पूछने प्रारंभ किए, जैसे वो कलयुग का वर्णन करने लगे, प्रायेण अल्पायुष सभ्य कलौवस्मिन् युगे जना मंद सुमंद मतय मंद भाग्य ही उपद्रितः, कि ये जो कलयुग है, दरअसल ये यज्ञ कलयुग के प्रारंभ में वो कर रहे थे। तो वो क्यों आए थे एक साथ, वे लोग आए थे एक साथ कि अब कलयुग आ रहा है, कलयुग में लोगों को बहुत कष्ट होगा, तो उनके उद्धार के लिए हम यज्ञ करें। तो अब यज्ञ करने आए हैं सब, तो यहां वो कह रहे हैं कि कलयुग आ गया है, और क्या लक्षण है कलयुग के, प्रायेण अल्पायुष, आयु बहुत कम है। अभी वो लोग 1000 वर्ष तक तपस्या करने वाले, यज्ञ करने वाले, तो उनकी आयु कितनी होगी, पहले ही कई 1000 वर्ष रह चुके हैं। लेकिन कलयुग में अल्पायुष, 60 साल का व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है। दशरथ महाराज 60,000 वर्ष तक जिए, 60 साल का व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है। अभी 70 साल वो एक दिन गिनने लगता है, 80 साल बोनस है ना, अगर उससे आगे निकल गया तो बोनस है। फिर वो क्या कहते हैं कि बस चल रहा है, क्योंकि वो बोनस पे चल रहा है, उसकी उम्र खत्म हो गई है, बस थोड़ा बहुत है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, पहले लोग तो इस कलयुग में बहुत कम उम्र है। अल्पायुष कलौवस्मिन् युगे जना मंद सुमंद मतयो मंद भाग्या ही उपदितः, बहुत आलसी हैं लोग, ये ऋषि मुनि कह रहे हैं, आलसी हैं, मंद, काम नहीं करना चाहते हैं, मेहनत नहीं करना चाहते। हम लोग देखते हैं बाहर समाज में, ये बहुत है। लोग कैसे जल्दी पैसा मिले वो कमाना चाहते हैं, मेहनत नहीं करना चाहते, इसीलिए धोखा बहुत खाते हैं। आप देखिए ऐसे कई लोग हैं जो धोखा, प्रभु भक्ति सिद्धांत कहा करते थे, दो प्रकार के लोग हैं, एक धोखा देने वाले, दूसरे धोखा खाने वाले, बस। और यही है, कोई व्यक्ति आता है एक स्कीम लेकर आता है, आप इतना पैसा लगाइए महीने भर के अंदर डबल, व्यक्ति को बड़ा आनंद आता है, यस, बिना मेहनत किए पैसा मिल रहा है, आलसी है, मंद। फिर ऑफकोर्स पैसा डूब जाता है, वो अलग बात है। मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य ही, ऊपर से एक तो आलसी हैं, बुद्धि नहीं है, दूसरे भाग्य खराब है, मंद भाग्य ही उपद्रता, सब कुछ कम है। और ऊपर से उपद्रता, उपद्रता मतलब हमेशा विचलित रहते हैं, कभी संतुष्ट शांत नहीं रहते, ये कलयुग का लक्षण है ना। हम लोग देखते हैं हमेशा व्यक्ति कुछ ना कुछ, अरे ये हो गया, वो हो गया, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, शांत से बैठकर जब भी नहीं होता, जब करते समय भी व्यक्ति कुछ ना कुछ सोचता रहता। तो मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य ही उपदितः, इस कलयुग में क्या होगा। और फिर उन्होंने प्रश्न पूछने प्रारंभ किए, 9वें श्लोक में पहला प्रश्न वो पूछते हैं। और क्या प्रश्न उन्होंने पूछा, कि ये जो लोग हैं, साधारण जो लोग हैं, इनका उद्धार कैसे होगा, इनके लिए सबसे ऊंची कार्य क्या है, सर्वोच्च अच्छा कार्य क्या है इनके लिए, हाईएस्ट वेलफेयर एक्टिविटी, तो ये बताइए कि जो सबके लिए। देखिए उन्होंने प्रश्न किसके लिए किया, अपने लिए नहीं किया, लोगों के लिए। पहला ही प्रश्न उन्होंने कहा कि लोगों के लिए सर्वोच्च स्थिति क्या है, अर्थात उनको क्या प्राप्त करना है, उनके लिए क्या लक्ष्य है। तो सबसे पहले प्रयोजन के विषय में प्रश्न किया कि क्या मनुष्य जीवन का क्या प्रयोजन है, वो क्या करें। तो इसीलिए पहला प्रश्न उन्होंने किया कि सब लोगों के लिए बहुत अच्छी चीज, सर्वोच्च चीज, सर्वश्रेष्ठ चीज, मार्ग क्या है उसको बताइए। तो ये हमारे लिए एक उदाहरण है कि जीवन में वो सिखला रहे हैं कि हमें प्रयास करना चाहिए दूसरों के लिए जीना। अपने लिए ना उन्होंने प्रश्न किया, ना वो यज्ञ कर रहे थे अपने लिए, उन्होंने प्रश्न किया दूसरों के लिए। तो इसलिए हमें ये सीखना चाहिए कि किस प्रकार हम अपना जीवन दूसरों के लिए जी सकें। अपने लिए बहुत जीवन जी लिए हमने, सारे जितने पहले के जीवन थे सब अपने लिए ही जिए, अब हमें दूसरों के लिए और अंततः भगवान के लिए जीना प्रारंभ करना चाहिए। तो ऐसे उन्होंने प्रश्न किया। दूसरा उन्होंने प्रश्न किया कि ठीक है सबसे अच्छी चीज़ आप बताएंगे, लेकिन उसको करने का मार्ग भी बताइए, अर्थात शास्त्रों का सार क्या है। ये दूसरा प्रश्न उनका था। पहला प्रश्न था कि सारे लोगों के लिए सबसे श्रेष्ठ कार्य क्या है जिसको आगे बताए। इन्हें ये प्रश्न आज हम लोग बता रहे हैं, कल से इनके उत्तर प्रारंभ करेंगे, दूसरे अध्याय से उत्तर देना प्रारंभ करते हैं सूत गोस्वामी। तो आज प्रश्न, क्योंकि पहले अध्याय में केवल प्रश्न है। तो पहला प्रश्न उन्होंने किया, फिर दूसरा प्रश्न किया कि शास्त्रों का सार क्या है। ये जो इतने सारे शास्त्र दिए गए, बहुत सारे शास्त्र हैं, अगर हम शास्त्रों की बातें करें तो वेद हैं, उपनिषद हैं, पुराण हैं, संहिताएं हैं, इतिहास है, बहुत सारे ऐसे चीज हैं। तो क्या इनका सार है, इनसे हमें क्या सीखना चाहिए, क्या लेने योग्य चीज है उसको बताइए। तो ये दूसरा प्रश्न उन्होंने किया। तीसरा प्रश्न उन्होंने किया कि श्री कृष्ण देवकी के गर्भ में प्रकट हुए, गर्भ से प्रकट हुए, क्या उद्देश्य था, वो क्यों आए देवकी के गर्भ में, मतलब कृष्ण को आने की क्या आवश्यकता थी। तो कृष्ण ने जन्म क्यों लिया, जन्म कर्म च मे दिव्यम, तो जन्म और कर्म की बात वो करने जा रहे हैं। तो इसलिए उन्होंने पूछा कि कृष्ण ने जन्म लिया, उसका आप हमें वर्णन कीजिए। और फिर उन्होंने चौथा प्रश्न किया कि उनके कार्यों का वर्णन कीजिए, भगवान क्या क्या कार्य करते हैं। दरअसल इसके संबंध में जीव गोस्वामी कहते हैं कि इस प्रश्न में ऋषि मुनि भगवान की सृष्टि जो करते हैं, भगवान उसका वर्णन पूछ रहे हैं, अर्थात पुरुष अवतारों का वर्णन पूछ रहे हैं। तीन पुरुष अवतार होते हैं तो उनका वर्णन उन्होंने पूछा, जिसका उत्तर सूत गोस्वामी आगे देंगे। और फिर उन्होंने कहा, पांचवा प्रश्न पूछा लीला अवतारों के विषय में, भगवान के अलग अलग अवतारों का वर्णन कीजिए, भगवान आते हैं अलग अलग अवतार लेते हैं, क्यों लेते हैं और कैसे लीला करते हैं। तो ये उन्होंने अलग अलग अवतारों का वर्णन किया, जिसका उत्तर तीसरे अध्याय में सूत गोस्वामी बहुत से अवतारों का वर्णन करके करेंगे। तो उन्होंने अलग अलग अवतारों का वर्णन पूछा। और आखिरी प्रश्न उन्होंने पूछा, बहुत महत्वपूर्ण, उन्होंने कहा कि अभी कृष्ण चले गए हैं तो कहां पर धर्म ने कहां आश्रय लिया। श्री कृष्ण तो चले गए, तो श्री कृष्ण सुधाम उपगते, तो कृष्ण तो धाम चले गए हैं, अब ये बताइए कि धर्म ने किसका आश्रय लिया। जब तक कृष्ण थे धर्म उनके आश्रय में था, अब कृष्ण चले गए हैं तो धर्म क्या है, कौन समझाएगा, किसके आश्रय में धर्म चला गया। ये श्रीमद् भागवत का गुणगान हुआ आगे चलकर। तो ऐसे ये छह प्रश्न उन्होंने पूछे इस पूरे अध्याय में, श्लोक क्रमांक 9 से लेकर 23 तक उन्होंने इन प्रश्नों को पूछा कि क्या क्या हम सीख सकते हैं, क्या हम जान सकते हैं, आप बताइए। तो ये जो पूरा अध्याय है, पहले श्लोक से लेकर 23वें श्लोक तक, हमें बहुत सुंदर ज्ञान भी देता है। पहले श्लोक से तीसरे श्लोक तक, अभी तो हमने चर्चा की जो उसका विषय है, प्रश्न पूछना इत्यादि, अब हम लोग चर्चा करेंगे कि इन विषयों से हम क्या सीख सकते हैं, ये पहला अध्याय हमें क्या शिक्षा देता है। तो पहला अध्याय पहले से तीसरे श्लोक तक हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें श्रीमद् भागवतम का पाठ सुनना चाहिए, करना चाहिए, एक प्रामाणिक गुरु के द्वारा उसको हमें सुनना चाहिए। क्योंकि तीसरे श्लोक में भी वो कहते हैं कि ये जो श्रीमद् भागवतम महामुनि कृते, तो हमें ये जो भागवत है ये किसी प्रामाणिक गुरु से सुननी चाहिए और उसको कृष्ण परम सत्य हैं इसके द्वारा ये जानना चाहिए। तो भक्ति में रहकर भक्ति करते हुए प्रामाणिक भक्तों से, शुद्ध भक्तों से भगवान के विषय में श्रीमद् भागवतम सुननी चाहिए, जिससे हम जान सकें कि परम सत्य श्री कृष्ण हैं। ये पहले से लेकर तीसरे श्लोक तक हमें संदेश दिया गया। चौथे से आठवें श्लोक में संदेश मिलता है कि सुनना बड़ा महत्वपूर्ण है, हियरिंग। तो किससे सुनना है, लक्षण दिए गए। जैसे हमने बताया आपको व्यास आसन पर बैठने वाले व्यक्ति के लक्षणों का वर्णन श्रील प्रभुपाद करते हैं, तो हमें श्रीमद् भागवतम ये केवल व्यास देव के प्रामाणिक प्रतिनिधि से सुननी चाहिए। ये चौथे से आठवें श्लोक का सार या संदेश है। तो हमें किसी से भी नहीं सुन लेना चाहिए। कई बार लोग कहते हैं अरे भागवतम तो शुद्ध है, कोई भी कहे क्या फर्क पड़ता है, वो तो शुद्ध है। प्रभुपाद कहा करते थे कि शुद्ध है लेकिन अगर सर्प के मुख से आ रही है, तो उदाहरण शास्त्र में श्लोक है कि अगर दूध है, दूध वैसे शुद्ध है लेकिन अगर उसको सर्प ने स्पर्श कर लिया तो वो जहर हो जाता है, वही दूध। इसी तरह भागवतम अमल है, शुद्ध है, इसको कुछ नहीं हो सकता, लेकिन अगर वो एक अभक्त के मुख से आती है तो वो विष के समान है। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति भागवत के सार को समाप्त कर देता है, भागवत के प्रमुख संदेश को नहीं देता, श्री कृष्ण का गुणगान नहीं करता, इसीलिए वो विष के समान है। तो हमें ये जान लेना चाहिए, इससे हमें संदेश, इन संदेशों को आप स्मरण रखिएगा। ये भागवत के प्रथम स्कंद के संदेश हैं। पहला संदेश, श्रीमद् भागवतम प्रामाणिक गुरु से सुने श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए भक्ति करते हुए, और दूसरा व्यास देव के प्रतिनिधि से ही केवल सुनना चाहिए और उसके लक्षण क्या हैं वो उसमें बताए गए हैं। तो व्यास देव के प्रतिनिधि से ही हम इनको सुने, बाहर किसी से नहीं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। कभी कभी हमें अच्छा लगता है कोई बाहर का व्यक्ति आकर कोई कथा करता है जो प्रामाणिक परंपरा में नहीं है, व्यास देव की परंपरा में नहीं है, वो आकर हो सकता है कुछ बहुत सुंदर भागवत कहे, बड़ी अच्छी तरह से कहे, बड़ा अच्छा लगे, मनोरम लगे, मन को अच्छा लगे, लेकिन ये केवल हमारे लिए एक आनंद लेने का विषय होगा, एंटरटेनमेंट केवल, बस उससे कोई लाभ नहीं होगा, हृदय शुद्ध नहीं होगा, हम अपना जीवन समर्पित नहीं करेंगे। इसीलिए आप देखिए लोग क्या क्या नहीं करते हैं। बड़े बड़े भागवत सप्ताह होते हैं, बहुत लोग आते हैं, बहुत बढ़िया होते हैं, गाते हैं, बताते हैं, हृदय किसी का परिवर्तन नहीं होता, बाहर जाके सब शराब सिगरेट पीते हैं, भागवत सुनी बीच में गैप है आधे घंटे का, बाहर जाके थोड़ा सिगरेट फूंक कर आते हैं, क्या लाभ भागवत। क्यों? क्योंकि प्रामाणिक व्यक्ति से नहीं सुन रहे। तो चार से आठ ये, नौ से तेरह का विषय, नौ से तेरह अर्थात नवे अध्याय से, नवे श्लोक से तेरहवें श्लोक तक एक बहुत सुंदर संदेश हमें मिलता है, और वो ये कि जब सुनने वाला और कहने वाला दोनों योग्य व्यक्ति होते हैं तो कृष्ण हृदय में स्थापित होते हैं। सुनने वाला और कहने वाला, इन दोनों को योग्य होना चाहिए। अर्थात योग्यता क्या है सुनने वाले की? सुनने वाले को बड़े समर्पित भाव में सुनना चाहिए, जीवन में कुछ नियमों का पालन होना चाहिए। बोलने वाले के लक्षण तो हम पहले ही बता चुके हैं। तो इसीलिए जब सुनने वाला और बोलने वाला दोनों योग्य होते हैं तो बड़ी अच्छी तरह से कृष्ण को समझ सकते हैं। ये 9 से 13 का विषय। फिर 14 से 20 तक बहुत सुंदर संदेश और एक बढ़िया बहुत ही अच्छा संदेश हमें मिलता है कि जब हम श्रवण करते हैं, क्योंकि यहाँ पर इन श्लोकों में ऋषि मुनि सुनने की इच्छा कर रहे हैं। बहुत सुंदर श्लोकों में वो कहते हैं, एक श्लोक वो कहते हैं, वयम तु न वितृप्याम उत्तम श्लोक विक्रमे यक्षृण्वताम रसज्ञानाम स्वादु स्वादु पदे पदे। वो कहते हैं कि वयम तु न वितृप्याम, हम कभी संतुष्ट नहीं होंगे। उन्होंने सुत गोस्वामी से कहा कि आप कथा सुनाइए कृष्ण की। फिर उनके मन में आया कि कहीं सुत गोस्वामी ये तो नहीं सोच रहे कि कितनी सुनाऊं, ये तो संतुष्ट हो जाएंगे। वयम तु न वितृप्याम उत्तम श्लोक विक्रमे, भगवान के जो कार्य हैं उत्तम श्लोक, जिनको उत्तम श्लोक के नाम से जाना जाता है, उनके कार्यों को सुनने में वयम तु न वितृप्याम, हम कभी संतुष्ट नहीं होते हैं। ये भक्तों के लक्षण हैं। हमें तो नींद आ जाती है वो अलग बात है, भागवतम में नींद लेना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, लेकिन वहाँ के ऋषि मुनि कोई सोए नहीं, 88,000 ऋषि मुनि एक भी नहीं सोया था। वयम तु न वितृप्याम उत्तम श्लोक विक्रमे यक्षृण्वताम, जिसको सुनकर रसज्ञानाम, रसज्ञ यानी जिनको रस का ज्ञान है, जो जान गए हैं कि भागवत में क्या रस है, कृष्ण कथा में क्या रस है, जो इस भौतिक जगत के निम्न रस को छोड़ चुके हैं, जान चुके हैं कि जो भौतिक जगत का रस है कोई आनंद नहीं है, पुनः पुनश्चर्विता चर्विणा चर्वणानाम, सातवें स्कंद में कहा गया। इस भौतिक जगत का रस क्या है, जैसे बार बार एक चीज को चूस चूस कर उसी को रस निकालने का प्रयास किया जाए, बार बार उसका उसको चबाया जाए, पहले चबाए हुए को फिर से चबाया जाए, क्या रस होगा। यह भी प्रभुपाद उदाहरण देते थे कि एक आप बांबू लीजिए, एक लकड़ी, और उसको चबाइए गन्ना समझकर, क्या रस निकलेगा, कितना ही चबा लीजिए। तो वयम तु न वितृप्याम उत्तम श्लोक विक्रमे यक्षृण्वताम रसज्ञानाम, तो जो रसज्ञ होते हैं जिनको रस का ज्ञान हो गया है, स्वादु स्वादु पदे पदे, हर पद पर जैसे जैसे सुनते जाते हैं उनका स्वाद बढ़ता जाता है। आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम, ये कृष्ण कथा का लाभ है। तो इसीलिए वो बताते हैं कि श्रवण का, श्रवण से क्या होता है, जब हम भागवत श्रवण करेंगे ज्यादा से ज्यादा रोज, जैसे अभी हम लोग यहाँ पर रोज एक एक अध्याय और भागवत के एक श्लोक को पढ़ेंगे, तो जैसे जैसे भागवत पढ़ेंगे तो ये जो भौतिक आकर्षण है वो दूर हो जाएगा हमारे हृदय से। ये कलयुग का भौतिक आकर्षण बहुत तीव्र है, बाकी युगों में भी भौतिक आकर्षण होता है लेकिन इतना तीव्र नहीं होता जितना कलयुग में है। क्यों? मंद सुमंद मतयो, मंद भाग्य ही उपद्रता, बुद्धि है नहीं, आलसी हैं, इसलिए भौतिक जगत बड़ा आकर्षक लगता है। तो जब भागवत सुनेंगे रोज तो ये भौतिक जगत का जो आकर्षण है कम हो जाएगा और ये भागवत हमें कृष्ण की ओर खींच लेगी। तो ये लाभ है, ये संदेश है नवे श्लोक से आगे हम सबके लिए, 14वें श्लोक से। और फिर आखिरी तीन श्लोकों में बहुत सुंदर संदेश दिया गया, उसमें कहा गया है कि ये जो जीवन है बड़ा छोटा है, कलयुग का जीवन है, और इसमें एक ही लाभ है, चैतन्य महाप्रभु के द्वारा बताया हुआ मार्ग, आत्म साक्षात्कार का मार्ग, श्रवण और कीर्तन, अगर इसको कोई अपनाता है तो इस छोटे जीवन में भी, जीवन बहुत छोटा है हमारा, ज़्यादा बड़ा नहीं है, हमें तो बड़ा लगता है, अरे 50 साल 60 साल 70 साल पता ही नहीं चलता कब चला जाता है, व्यक्ति अपने आप को बूढ़ा नहीं समझता जब तक दूसरे लोग उसको समझाते नहीं हैं या शरीर में कष्ट होना शुरू नहीं होता, तब तक व्यक्ति मैं जवान हूँ। तो बहुत छोटा जीवन है लेकिन इसमें भी हम श्रवण और कीर्तन करके, चैतन्य महाप्रभु के द्वारा बताए हुए आत्म साक्षात्कार मार्ग का पालन करके जीवन को सफल कर सकते हैं। तो ये पहला अध्याय का सार है, पहला अध्याय में ये शिक्षाएं देता है, प्रश्न पूछे जिज्ञासा की ये समझाने के लिए कि कैसे हमें दूसरों के लिए जीना चाहिए, कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए, श्रवण और कीर्तन में आनंद लेना चाहिए। और जब इन प्रश्नों को, इन छह प्रश्नों को सुत गोस्वामी से उन्होंने किया, तो दूसरे अध्याय के प्रारंभ से सुत गोस्वामी ने बोलना शुरू किया। तो कल हम लोग इन श्लोकों की चर्चा करेंगे कि कैसे ये जो उत्तर हैं एक एक प्रश्न के, ये कैसे सुत गोस्वामी ने दिए। छह प्रश्नों के उत्तर वो अगले दो अध्यायों में देंगे, उसके बाद चौथे अध्याय में फिर से प्रश्न करेंगे। चार प्रश्न और किए उन्होंने, बहुत महत्वपूर्ण, परीक्षित महाराज के विषय में, सुखदेव गोस्वामी के विषय में उन्होंने प्रश्न किए श्रीमद् भागवतम के। तो ये प्रश्न फिर हम लोग आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे सुनेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम।